नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है लोकतंत्र में बहिष्कार की क्या जरूरत। गठबंधन द्वारा बैन किए जाने के बाद सबसे पहला विरोध इन एंकरों की तरफ से आया, जिन्होंने नाखून कटवाकर शहीद होने की घोषणा कर दी। खुद पर लगाए बैन को आपातकाल घोषित कर पत्रकारिता पर हमला तक करार दे दिया। जिन 14 एंकरों पर बैन लगाए, उसमें से ज्यादातर ने बैन लगवाने वाले दिन भी प्रोग्राम में विपक्ष द्वारा लगाए गए बैन को गलत बताने को लेकर उसमें किसी भी एक ने भी इसकी हिम्मत नहीं की कि बैन लगाए जाने के पीछे का कारण क्या है। आज हमारे साथ लोकतंत्र में बहिष्कार की क्या जरूरत, इस विषय पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल लेने पर स्वागत सर आपका।
जी नमस्कार योगेश भाई।
सर, क्या देखते हैं कि गठबंधन द्वारा जो मीडिया के प्रोग्रामों पर प्रतिनिधि न भेजने का जो निर्णय लिया गया, इस निर्णय को किस रूप में देखते सर आप?
गठबंधन के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है, विशेष करके कांग्रेस के द्वारा, कि
जी
हमारे प्रतिनिधि ये 12-13 जो एंकर हैं, इनसे बात नहीं करेंगे, इनके चैनल पे नहीं जाएंगे,
जी
यह एक प्रकार का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है।
जी
ठीक है, लोकतंत्र में बहिष्कार करने का अधिकार तो है,
जी
बहिष्कार होना चाहिए, सहमति असहमति चलती रहती है, परंतु यह तरीका नहीं है। इनको चाहिए था कि बहिष्कार का मतलब होता है सत्य बात को करना। क्या कांग्रेस के लोग वहां जाकर के सत्य बोल रहे हैं?
जी
यह भी तो मुद्दा से भटकाने का काम कर रहे हैं ना। और पत्रकारों के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो नेताओं को, प्रतिनिधियों को जलील करने लगे।
जी
तो उसके जड़ में जाकर के देखा जाए तो उसके जड़ में सत्ता है, और सत्ता इनको चलाने का काम कर रही है मीडिया को।
जी
तो एक तरीके से जो कांग्रेस के लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने जो बहिष्कार किए हैं,
जी
उनके बहिष्कार का जो आधार है वो लोकतांत्रिक नहीं है।
जी
उनको चाहिए कि वो चैनल पे जाए, बोले, अपनी बात रखे। भाई आपको अपनी बात रखने में दिक्कत क्या है? ठीक है, सामने वाला अगर आपसे काउंटर सवाल कर रहा है, आप चुप रही है,
जी
लेकिन उसका बहिष्कार कर देना। और यह बहिष्कार बहुत दिनों के लिए नहीं, योगेश भाई,
जी
आप देखिए कि आज इनकी सरकार नहीं है तो ये बहिष्कार कर रहे।
जी
कल इनकी सरकार अगर आ गई, कांग्रेस की चाहे गठबंधन की, तो यही जो 12-13 पत्रकार है इनके पीछे घूमने लगेंगे, तो क्या उस समय भी इनका ही बहिष्कार करेंगे? एक तरीके से यह मीडिया का बहिष्कार न करके यह सत्ता का बहिष्कार कर रहे हैं।
जी
और आज जो एंकरों की दशा हुई है, आज जो मीडिया की दशा हुई है, यह मीडिया को चलाने वाले तो कॉरपोरेट लोग हैं, कॉरपोरेट जगत के लोग हैं।
जी
तो मीडिया जो है आज पत्रकारिता न करते हुए कॉरपोरेट जगत की चाकरी कर रही है, एक प्रकार से बनिए की नौकरी करने का काम कर रही है। तो मीडिया में भी वो ताकत नहीं रह गई है कि वो सत्ता से सवाल पूछे, और सत्ता के द्वारा जो बना करके दिया जा रहा है वही जवाब, वही सवाल करने का काम वो कर रही है विपक्ष के द्वारा। परंतु विपक्ष को यह कह देना कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, हम 13-14 चैनलों से बात नहीं करेंगे, बाकी चैनलों से तो आप बात कर रहे हैं ना,
जी
बाकी चैनलों से तो आप बात करेंगे, क्या वहां के पत्रकार, इसके मतलब आप बताना चाहते कि वहां के पत्रकार हमारे हैं और यह पत्रकार दूसरे हैं? तो ऐसा नहीं चलता है। इनको एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाना चाहिए था, उनका
जी
इतना बहिष्कार करना ठीक नहीं है। और बहिष्कार भी करना था तो अपना जो प्लेटफॉर्म बना है उस पर बहिष्कार करिए। आप कब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे? आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। क्या इनके जहां जहां जिन जिन राज्यों में इन लोगों की सरकार है, इंडिया गठबंधन में कई प्रकार के लोग हैं जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, तो क्या अपने यहाँ वो लोग बात नहीं कर रहे हैं? बिहार में क्या नीतीश कुमार बात नहीं करेंगे? तेजस्वी यादव बात नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में क्या केजरीवाल जी और पंजाब में भगवत मान जी बात नहीं कर रहे? तो यह तो एक प्रकार की इनकी ढकोसलेबाजी है कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। अगर इनको चाह रहे हैं कि मीडिया में सुधार हो, तो पहले इनको भी अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। और मीडिया की जो दशा है वो तो मीडिया स्वयं देख ही रही है, उसकी दशा क्या है।
सर, क्या देखते हैं कि जो पत्रकारिता की विश्वसनीयता और लोगों के मुद्दों को किस रूप में देखा जाए, और आम जनता ऐसे निर्णयों को क्या किस नजरिए से देखे सर?
देखिए योगेश भाई, लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है अपना अखबार और मीडिया।
जी
मीडिया एक प्रकार से समाज की दर्पण है,
जी
परंतु वर्तमान में आप देख लीजिए, यह 2014 के बाद की ही बात नहीं है,
जी
इसके पहले भी जाकर के आप देख लीजिए, तो जो सत्ता रही है उससे मीडिया कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, परंतु आज मीडिया पूरी तरीके से सत्तामय बन गई है। मैंने पहले ही क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि ये जो पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग तो बनिए की नौकरी करना पसंद कर लिए है, और
जी
एक प्रकार से पत्रकारिता के जगह पर चटुकारिता करना शुरू कर दिए। तो आज जो एंकर है, आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, जब इनका डिबेट शुरू होता है तो टीवी बंद करके धारावाहिक देखने लगते हैं,
जी
आज इनको सुनना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि मीडिया जो सूचना देना चाहती है वो सूचना नहीं दे रही। मीडिया आज एक प्रकार से सरकार की योजनाओं की उद्घोषक बन गई है, और वो डिबेट कम करती है, सरकार की योजनाओं पे चर्चा ज्यादा करने लगती है। मीडिया इतनी पारदर्शी होती, मीडिया इतनी साहसी होती, तो अपने 9 साल के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए, बात
जी
नहीं रखे, परंतु मीडिया ने उनसे एक बार भी सवाल नहीं किए। और आप देख लीजिए कि जिन पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, उसमें दो तीन लोगों का नाम मैं जानता हूं, एक अमीश देवगन है, एक वो रूबिका लिकाय जी है, एक नरसिन्हा जी है, इन लोगों का आप डिबेट देखिए तो विपक्षी को हड़का करके बात करते हैं, और तुम ताम के तरीके से बात करने लगते हैं, लगता है कि यही लोग नेता है, यही लोग लोकतंत्र चला रहे हैं, यानी ये लोग चुने हुए प्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं करना जानते हैं। तो ऐसे लोगों का तो ठीक है, वास्तव में बहिष्कार होना चाहिए। आज मीडिया के अंदर से लोगों की और आम जन की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। लोग यह कह रहे हैं कि मीडिया ना होकर के यह सत्ता के पक्ष में काम करने वाले लोग हो गए। इनसे तो बढ़िया आप योगेश भाई देख लीजिए कि आपकी मोबाइल बानी है, ये बड़े बड़े एंकरों से और बड़े बड़े चैनलों से बढ़िया तो अपने सोशल मीडिया के लोग हैं, जो कम से कम अच्छा खबर डाल रहे हैं। और सोशल मीडिया जो है आज आम लोगों की ताकत बन गई है, लोग उन पर न जा करके, लोग प्रेस पत्रकारों के पास जा न जा करके, स्वयं सोशल मीडिया पे जा करके काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से न्यूज उठा ले रहे हैं, समाचार उठा ले रहे हैं। तो पत्रकार और पत्रकारिता का जो वर्तमान में स्वरूप बना है, यह जो अपना भूमिका तय कर रहे हैं, यह भूमिका इनके विश्वसनीयता को गिरा दिए। पत्रकार यदि बनिए की नौकरी करना लगेगा तो अपने कर्म से, अपने धर्म से दूर हो जाएगा, और आज यही हुआ है कि भारतीय पत्रकारिता पूरी तरीके से कारपोरेट जगत और सत्ता की चटुकारिता करने में ही अपने भविष्य को देख रही है, एक तरीके से उनकी चरण शोभा बनने का काम कर रही है। तो यह लोकतंत्र का अब चौथा आधार स्तंभ कहने पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जा रहा है इनके सामने। तो
जी सर, क्या देखते हैं कि जो 2023 की जो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारत का जो स्तर था वो 161वें नंबर पर था
जी
सर, तो ये निरंतर बढ़ते रहता है, कम होते रहता है, लेकिन जिस तरीके से आने वाले 2-3 सालों में निरंतर बढ़ता गया है प्रेस की स्वतंत्रता का जो स्तर है, उसमें से कई और अपने नजदीक के देशों का जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो बेहतर हुई है सर, इस पर आपकी क्या राय है सर?
देखिए, अपने देश के अंदर जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात है, तो
जी
आप 1992 के बाद देखिए,
जी
1992 तक जो पत्रकारिता थी ठीक है चल रहा था,
जी
एक संपादकीय पेज हुआ करता था
जी
जिसमें खुल करके लिखा जाता था, परंतु आज जो संपादकीय पेज लिखने वाले लोग हैं वो भी सत्ता परस्त होकर के लिखना शुरू कर दिए। 2001 आते आते पूरी तरीके से मीडिया में कारपोरेट जगत हावी हो गई, और कारपोरेट आप देख रहे योगेश भाई कि आज जो कारपोरेट लॉबी है वही सरकार को चला रही है, पूरी मीडिया उनके कवर में है, पूरी मीडिया को खरीद चुके हैं। तो कारपोरेट लॉबी जिनकी सरकार बनाती है वो प्रयास करती है, और पुनः वही पूरा काम करती है कि मीडिया भी उसी का काम करे। तो आज मीडिया पूरी तरीके से सरकार का काम कर रही है, और जो व्यक्ति सरकार पे काम करने लगेंगे, व्यवस्था के पक्षधर रह जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। स्वतंत्रता तो उस समय आपकी रहेगी ना जब आप सच्चाई को लिखेंगे। हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सरकार का विरोध करिए, सरकार जो अच्छा कर रही है आप उसको भी लिखिए, सरकार जो बुरा कर रही है आप उसको भी लिखिए। यानी मीडिया का एक काम है कि जनता के और सरकार के बीच में खड़ा होकर के दोनों को सही सूचना देना। परंतु आज सरकार और जनता के बीच में जो मीडिया की भूमिका है, वह मीडिया स्वयं समाप्त कर रही है। न जनता को सूचना दे पा रही है और न ही जनता की परेशानियों को सरकार के पास ले जाने का काम कर रही है। यह तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की योजनाओं का बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का काम कर रही है। तो मीडिया के जो स्वतंत्रता का अवमूल्यन हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, यह तो अभी और होने वाला है। क्योंकि मीडिया के अंदर जितने कारपोरेट लॉबी प्रवेश करेगी, जितने पैसे वाले लोग प्रवेश करेंगे, जितने पूंजीपति प्रवेश करेंगे, मीडिया उतनी जकड़ेगी, उतनी परतंत्र हो जाएगी। मीडिया को अगर स्वतंत्र रहना है तो मीडिया अपने अंदर बदलाव करे, मीडिया देश के संविधान को पढ़े और देश के संविधान के अंदर जो समाजवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था के ऊपर रहे, उस व्यवस्था को कायम रखे, गांधी के सत्यता को अपनाए। क्योंकि तो मीडिया को लिखने और पढ़ने की अगर आजादी कहीं मिलेगी तो समाजवादी व्यवस्था में ही मिलेगी, और मीडिया आजाद होकर के अगर कहीं काम करेगी तो समाजवादी व्यवस्था में ही काम करेगी। यह पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में मीडिया स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर सकेगी, और जब मीडिया स्वतंत्र होकर के काम नहीं करेगी तो जनता की विश्वसनीयता घटेगी। आज आप देख लीजिए कि एक मीडिया है जो सरकार के पक्ष में काम कर रही है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सरकार के द्वारा गिरफ्तार करा करके जेल में डाल दिया जा रहा है। पत्रकारों को यह कहा जा रहा है कि सरकार विरोधी नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी। यानी आज जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है, देशद्रोही घोषित करके जेल में डाल दिया जा रहा है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो मीडिया ही है। मीडिया ने अपने अधिकार, अपने धर्म, अपने क्षेत्र और अपने कर्म से समझौता करके अपने को सत्तामय बना ली है। अपने को सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन की दुनिया में ले जाना चाहती है, और विज्ञापन की दुनिया से अलग नहीं ले जाने। और जो लेखक लोग है इसमें, जो संवाददाता है, जो पत्रकार है, वो भी कहीं ना कहीं दिवाली और होली के तोहफे की तरीके से काम कर रहे हैं कि तोहफा कितना मिल रहा है उस हिसाब से लिखने का काम कर रहे। अगर तोहफे के चक्कर में पड़ करके मीडिया काम करेगी तो उसकी स्वतंत्रता बाधित होगी। अगर मीडिया चाहती है कि अब स्वतंत्र रहे तो
सर
उसको समाजवादी तरीके से सोच करके कलम चलाना होगा।
जी सर सर मेरा अंतिम सवाल है, इसका संक्षेप में सर इसका जवाब चाहूंगा कि जिन
जी
पत्रकारों द्वारा बैन लगाया गया है, उन्होंने कहा है कि आपातकाल घोषित कर पत्रकारिता पर हमला कर दिया गया है, सर इस वाकियत को किस तरीके से देख रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि जिन पर बैन लगाया गया है उन्होंने आपातकाल घोषित है पत्रकारों पर इसको?
इसके संदर्भ में आप देखिए योगेश भाई, कि जो वर्तमान का विपक्ष है और जो वर्तमान का इंडिया नाम का गठबंधन है, वो भी यही कह रहा है कि सरकार ने घोषित आपातकाल रखी है, और वही बात पत्रकार कह रहे हैं, तो अंतर कहाँ है? अब यह पत्रकारों से पूछना चाहिए कि क्या विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति आपातकाल घोषित कर सकता है? क्या विपक्ष में बैठने वाले व्यक्ति के पास अधिकार है कि संविधान निलंबित कर सकता है? तो यह तो अघोषित आपातकाल कह करके यह 1974 और 75 का इंदिरा गांधी जी का आपातकाल याद दिलाना चाह रहे हैं। इनमें इनकी चाल को समझिए कि भाई उस समय ये सत्ता में थे तो घोषित आपातकाल कर दिए, और सत्ता में नहीं है तो अघोषित आपातकाल चल रहे। तो इनमें और विपक्ष में कोई अंतर नहीं है पत्रकार और विपक्ष में, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि अघोषित आपातकाल है और मीडिया कह रही है कि अघोषित आपातकाल है, जबकि दोनों सच्चाई बताना नहीं चाहते हैं। संविधान निलंबन नहीं हुआ है और विपक्ष के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि अघोषित आपातकाल लगा दिया जाए। यह तो सिर्फ और सिर्फ अपने बोलने के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं और बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग कह देते हैं कि अघोषित आपातकाल है। यह एक प्रकार का जुमला है, इससे आम जनता को नुकसान है और बड़े लोगों को फायदा है।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर लोकतंत्र में बहिष्कार की क्या जरूरत इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई नमस्कार।
जी, छिंदवाड़ा वैलेंस पदोस योगेश, धन्यवाद।